वसति न शून्यम् शून्यम् न वसति अगम अगोचर सा गगन शिखर मही बालक बोले ताका नावधर उगे कैसा बसतीन शून्यम न बसती हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम अहनिसी कथिबा ब्रह्म ज्ञानम हसे खेले न करे मन भंग ते निहचल सदा नाथ के संग बसती न शून्यम शून्यम न बसती अहनिसी मन ले उन मन रहे गम की छाड़ी अग की कहे छांडे आसा रहे निरास कहे ब्रह्मा हूँ ताका दास बसतीन शून्यम शून्यम न बसती अर्ध जाता उर्ध धरे काम दग्ध जे जोगी करे तजे अलंगन काटे माया ताका विष्णु पखाले पाया बसतीन शून्यम शून्यम न बसती मरो वे जो गी मरो मरो मरण है मिठा तिस मरणी मरो जिस मरणी गो रख मरी दीठा बस तीन शून्यम शून्यम न बसती अगम अगो चर ऐसा गगन शिखर मही बालक बोले ताका नाव धर रुगे कैसा बसतीन शून्यम शून्यम न बसती
महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने मुझसे एक बार पूछा कि भारत के धर्माकाश में वे कौन 12 लोग हैं मेरी दृष्टि में जो सबसे चमकते हुए सितारे हैं। मैंने उन्हें यह सूची दी, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, गोरख, कबीर, नानक, मीरा, रामकृष्ण, कृष्णमूर्ति। सुमितानंदन पंत ने आंखें बंद कर ली। सोच में पड़ गए। सूची बनानी आसान भी नहीं है, क्योंकि भारत का आकाश बड़े नक्षत्रों से भरा है। किसे छोड़ो, किसे गिनो? वे प्यारे व्यक्ति थे, अति कोमल, अति माधुर्यपूर्ण स्त्री, वृद्धावस्था तक भी उनके चेहरे पर वैसी ही ताजगी बनी रही जैसी बनी रहनी चाहिए। वे सुंदर से सुंदरतर होते गए थे। मैं उनके चेहरे पर आते जाते भाव पढ़ने लगा। उन्हें अड़चन भी हुई थी, कुछ नाम जो स्वभावतः होने चाहिए थे नहीं थे। राम का नाम नहीं था। उन्होंने आंख खोली और उनसे कहा, राम का नाम छोड़ दिया है आपने। मैंने कहा, मुझे 12 की ही सुविधा हो चुनने की, तो बहुत नाम छोड़ने पड़े। फिर मैंने 12 नाम ऐसे चुने हैं जिनकी कुछ मौलिक देन है। राम की कोई मौलिक देन नहीं है, कृष्ण की मौलिक देन है। इसलिए हिंदुओं ने भी उन्हें पूर्णावतार नहीं कहा। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, तो फिर ऐसा करें, 7 नाम मुझे दें। अब बात और कठिन हो गई थी। मैंने उन्हें 7 नाम दिए, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, शंकर, गोरख, कबीर। उन्होंने कहा, आपने जो 5 छोड़े, अब किस आधार पर छोड़े? मैंने कहा, नागार्जुन बुद्ध में समाहित थे। जो बुद्ध में बीज रूप था उसी को नागार्जुन ने प्रकट किया है। नागार्जुन छोड़े जा सकते हैं, और जब बचाने की बात हो तो वृक्ष छोड़े जा सकते हैं, बीज नहीं छोड़े जा सकते, क्योंकि बीजों से फिर वृक्ष हो जाएंगे, नए वृक्ष हो जाएंगे। जहां बुद्ध पैदा होंगे वहां सैकड़ों नागार्जुन पैदा हो जाएंगे, लेकिन कोई नागार्जुन बुद्ध को पैदा नहीं कर सकता। बुद्ध तो गंगोत्री है, नागार्जुन तो फिर गंगा के रास्ते पर आए हुए एक तीर्थ स्थल है प्यारे, मगर अगर छोड़ना हो तो तीर्थ स्थल छोड़े जा सकते हैं, गंगोत्री नहीं छोड़ी जा सकती। ऐसे ही कृष्णमूर्ति भी बुद्ध में समा जाते। कृष्णमूर्ति बुद्ध का नवीनतम संस्करण है, नूतनतम, आज की भाषा में। पर भाषा का ही भेद है। बुद्ध का जो परम सूत्र था, अप्पुदीपो भव, कृष्णमूर्ति बस उसकी ही व्याख्या है, एक सूत्र की व्याख्या, गहन, गंभीर, अति विस्तीर्ण, अति महत्वपूर्ण। पर अपने दीपक स्वयं बनो, अप दीपो भव, इसकी ही व्याख्या है। यह बुद्ध का अंतिम वचन था इस पृथ्वी पर। शरीर छोड़ने के पहले यह उन्होंने सार सूत्र कहा था, जैसे सारे जीवन की संपदा को, सारे जीवन के अनुभव को इस छोटे से सूत्र में समाहित कर दिया था। रामकृष्ण कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते, मेरा नानक कबीर में लीन हो जाते, जैसे कबीर की ही शाखाएं, जैसे कबीर में जो इकट्ठा था वह आधा नानक में प्रकट हुआ है और आधा मीरा में। नानक में कबीर का पुरुष रूप प्रकट हुआ है, इसलिए सिख धर्म अगर क्षत्रिय का धर्म हो गया, योद्धा का, तो आश्चर्य नहीं है। मीरा में कबीर का स्तृण रूप प्रकट हुआ है, इसलिए सारा माधुरी, सारी सुगंध, सारा सुवास, सारा संगीत मीरा के पैरों में घुंघरू बन के बजा है। मीरा के इकतारे पर कबीर की नारी गाई है, नानक में कबीर का पुरुष बोला है, दोनों कबीर में समाहित हो जाते। इस तरह मैंने कहा, मैंने ये सात की सूची बनाई। अब उनकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी, उन्होंने कहा और अगर पांच की सूची बनानी पड़े, तो मैंने कहा काम मेरे लिए कठिन होता जाएगा। मैंने ये सूची उन्हें दी, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, गोरख, क्योंकि कबीर को गोरख में लीन किया जा सकता है। गोरख मूल है, गोरख को नहीं छोड़ा जा सकता। और शंकर तो कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते, कृष्ण के ही एक अंग की व्याख्या है, कृष्ण के ही एक अंग का दार्शनिक विवेचन है। तब तो वे बोले बस एक बार और, अगर चार ही रखने हो। तो मैंने उन्हें सूची दी, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, गोरख, क्योंकि महावीर बुद्ध से बहुत भिन्न नहीं है, थोड़े ही भिन्न है, जरा सा ही भेद है, वह भी अभिव्यक्ति का भेद है। बुद्ध की महिमा में महावीर की महिमा लीन हो सकती है। वे कहने लगे बस एक बार और, आप तीन व्यक्ति चुने। मैंने कहा अब असंभव है, अब इन चार में से मैं किसी को भी छोड़ ना सकूंगा। फिर मैंने उन्हें कहा जैसे चार दिशाएं, ऐसे ये चार व्यक्तित्व हैं, जैसे काल और क्षेत्र के चार आयाम हैं, ऐसे ये चार आयाम है। जैसे परमात्मा की हमने चार भुजाएं सोची हैं, ऐसी ये चार भुजाएं, ऐसे तो एक ही है, लेकिन उस एक की चार भुजाएं, अब इनमें से कुछ छोड़ना तो हाथ काटने जैसा होगा, यह मैं ना कर सकूंगा। अभी तक मैं आपकी बात मान के चलता रहा, संख्या कम करता चला गया, क्योंकि अभी तक जो अलग करना पड़ा वह वस्त्र था, अब अंग तोड़ने पड़ेंगे। अंग भंग मैं ना कर सकूंगा, ऐसी हिंसा आप ना करवाएं। वे कहने लगे कुछ प्रश्न उठ गए, एक तो ये कि आप महावीर को छोड़ सके गोरख को नहीं। गोरख को नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि गोरख से इस देश में एक नया ही सूत्रपात हुआ, महावीर से कोई नया सूत्रपात नहीं हुआ, वे अपूर्व पुरुष हैं। मगर जो सदियों से कहा गया था, उनके पहले जो 23 जैन तीर्थंकर कह चुके थे, उसकी ही पुनरुक्ति है। वे किसी यात्रा का प्रारंभ नहीं है, वे किसी नई श्रृंखला की पहली कड़ी नहीं, बल्कि अंतिम कड़ी है। गोरख एक श्रृंखला की पहली कड़ी, उनसे एक नए प्रकार के धर्म का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। गोरख के बिना ना तो कबीर हो सकते, न नानक हो सकते, न दादू, न वाजिद, न फरीद, न मीरा। गोरख के बिना ये कोई भी ना हो सकेंगे। इन सबके मौलिक आधार गोरख में। फिर मंदिर बहुत ऊंचा उठा, मंदिर पर बड़े स्वर्ण कलश चढ़े, लेकिन नींव का पत्थर, नींव का पत्थर है। और स्वर्ण कलश दूर से दिखाई पड़ते हो, लेकिन नींव के पत्थर से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकते, और नींव के पत्थर किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते, मगर उन्हीं पत्थरों पर टिकी होती है सारी व्यवस्था, सारी भित्तियां, सारे शिखर। शिखरों की पूजा होती, बुनियाद के पत्थरों को तो लोग भूल ही जाते, ऐसे ही गोरख भी भूल गए। लेकिन भारत की सारी संत परंपरा गोरख की ऋणी है। जैसे पतंजलि के बिना भारत में योग की कोई संभावना न रह जाएगी, जैसे बुद्ध के बिना ध्यान की आधारशिला उखड़ जाएगी, जैसे कृष्ण के बिना प्रेम की अभिव्यक्ति को मार्ग न मिलेगा, ऐसे गोरख के बिना उस परम सत्य को पाने के लिए विधियों की जो तलाश शुरू हुई, साधना की जो व्यवस्था बनी, वह न बन सकेगी। गोरख ने जितना आविष्कार किया मनुष्य के भीतर अंतर खोज के लिए, उतना शायद किसी ने भी नहीं किया है। उन्होंने इतनी विधियां दी कि अगर विधियों के हिसाब से सोचा जाए तो गोरख सबसे बड़े आविष्कारक हैं। इतने द्वार तोड़े मनुष्य के अंतर तम में जाने के लिए, इतने द्वार तोड़े कि लोग द्वारों में उलझ गए। इसलिए हमारे पास एक शब्द चल पड़ा, गोरख को तो लोग भूल गए, गोरख धंधा शब्द चल पड़ा। उन्होंने इतनी विधियां दी कि लोग उलझ गए कि कौन सी ठीक, कौन सी गलत, कौन सी करें, कौन सी छोड़ें। उन्होंने इतने मार्ग दिए कि लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। इसलिए गोरख धंधा शब्द बन गया। अब कोई किसी चीज में उलझाओ तो हम कहते हैं क्या गोरख धंधे में उलझे। गोरख के पास अपूर्व व्यक्तित्व था, जैसे आइंस्टीन के पास व्यक्तित्व था। जगत के सत्य को खोजने के लिए जो पहने से पहने उपाय अल्बर्ट आइंस्टीन दे गया, उसके पहले किसी ने भी नहीं दिए थे। हां, अब उनका विकास हो सकेगा, अब उन पर और धार रखी जा सकेगी, मगर जो प्रथम काम था वह आइंस्टीन ने किया है। जो पीछे आएंगे वो नंबर दो होंगे, वह प्रथम नहीं हो सकते। राह पहली तो आइंस्टीन ने तोड़ी, अब इस राह को पक्का करने वाले, मजबूत करने वाले, मील के पत्थर लगाने वाले, सुंदर बनाने वाले, सुगम बनाने वाले बहुत लोग आएंगे, मगर आइंस्टीन की जगह अब कोई भी नहीं ले सकता। ऐसी ही घटना अंतर जगत में गोरख के साथ घटी। लेकिन गोरख को लोग भूल क्यों गए? मील के पत्थर याद रह जाते, राह तोड़ने वाले भूल जाते, राह को सजाने वाले याद रह जाते, राह को पहली बार तोड़ने वाले भूल जाते। भूल जाते हैं इसलिए कि जो पीछे आते हैं उनको सुविधा होती है संवारने की, जो पहले आता है वो तो अनगढ़ होता है, कच्चा होता है। गोरख जैसे खदान से निकले हीरे हैं। अगर गोरख और कबीर बैठे हो तो तुम कबीर से प्रभावित होगे, गोरख से नहीं, क्योंकि गोरख तो खदान से निकले हीरे और कबीर जिन पर जौहरियों ने खूब मेहनत की, जिन पर खूब छेनी चली, जिनको खूब निखार दिया गया। यह तो तुम्हें पता है ना कि कोहिनूर हीरा जब पहली दफा मिला तो जिस आदमी को मिला था उसे पता भी नहीं था कि कोहिनूर है। उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया था, समझ के कोई रंगीन पत्थर है। गरीब आदमी था, उसके खेत से बहती हुई एक छोटी सी नदी की धार में कोहिनूर मिला था। महीनों उसके घर पड़ा रहा कोहिनूर, बच्चे खेलते रहे, फेंकते रहे इस कोने से उस कोने, आंगन में पड़ा रहा। तुम पहचान ना पाते कोहिनूर को। कोहिनूर का मूल वजन 3 गुना था आज के कोहनूर से। फिर उस पर धार रखी गई, निखार किए गए, काटे गए, उसके पहलू उभारे गए। आज सिर्फ 1/3 वजन बचा है, लेकिन दाम करोड़ों गुना ज्यादा हो गए। वजन कम होता गया, दाम बढ़ते गए, क्योंकि निखार आता गया और निखार। कबीर और गोरख साथ बैठे हो, तुम गोरख को शायद पहचानो ही ना, क्योंकि गोरख तो अभी गोलकोंडा की खदान से निकले कोहिनूर हीरे, कबीर तो बड़ी धार रखी जा चुकी, जोहरी मेहनत कर चुके। कबीर तुम्हें पहचान में आ जाएंगे, इसलिए गोरख का नाम भूल गया, बुनियाद के पत्थर भूल जाते। गोरख के वचन सुनकर तुम चौंकोगे, थोड़ी धार रखनी पड़ेगी, अनगढ़ है। वही धार रखने का काम मैं यहां कर रहा हूं। जरा तुम्हें पहचान आने लगेगी, तुम चमत्कृत होगे। जो भी सार्थक है, गोरख ने कह दिया है, जो भी मूल्यवान है कह दिया है। तो मैंने सुमित्रानंदन पंत को कहा कि गोरख को न छोड़ सकूंगा, और इसलिए 4 से और अब संख्या कम नहीं की जा सकती। उन्होंने सोचा होगा स्वभावतः कि मैं गोरख को छोड़ूंगा, महावीर को बचाऊंगा। महावीर कोहिनूर है, अभी कच्चे हीरे नहीं है खदान से निकले। एक पूरी परंपरा है 23 तीर्थंकरों की, हजारों साल की, जिसमें धार रखी गई है, पैने किए गए, खूब समुज्ज्वल हो गए। तुम देखते हो 24 में तीर्थंकर है महावीर, बाकी 23 के नाम लोगों को भूल गए। जो जैन नहीं है वो तो 23 के नाम गिना ही ना सकेंगे, और जो जैन है वो भी 23 का नाम क्रमबद्ध रूप से ना गिना सकेंगे, उनसे भी भूल चूक हो जाएगी। महावीर तो अंतिम है, मंदिर का कलश, मंदिर के कलश याद रह जाते, फिर उनकी चर्चा होती रहती। बुनियाद के पत्थरों की कौन चर्चा करता है? आज हम बुनियाद के एक पत्थर की बात शुरू करते, इस पर पूरा भवन खड़ा है भारत के संत साहित्य का, इस एक व्यक्ति पर सब दारमदार है। इसने सब कह दिया है जो धीरे धीरे बड़ा रंगीन हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा, जिस पर लोग सदियों तक साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, जिसके द्वारा न मालूम कितने सिद्ध पुरुष पैदा होंगे। मरो हे जोगी मरो, ऐसा अद्भुत वचन कहते हैं, मर जाओ, मिट जाओ, बिल्कुल मिट जाओ। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, क्योंकि मृत्यु से ज्यादा मीठी और कोई चीज इस जगत में नहीं। तिस मरणी मरो, और ऐसी मृत्यु मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। जिस तरह से मर के गोरख को दर्शन उपलब्ध हुआ, ऐसे ही तुम भी मर जाओ और दर्शन को उपलब्ध हो जाओ। एक मृत्यु है जिससे हम परिचित हैं, जिसमें देह मरती है, मगर हमारा अहंकार और हमारा मन जीवित रह जाता है। वही अहंकार नए गर्भ लेता है, वही अहंकार नई वासनाओं से पीड़ित हुआ फिर यात्रा पर निकल जाता है। एक देह से छूटा नहीं कि दूसरी देह के लिए आतुर हो जाता है। तो यह मृत्यु तो वास्तविक मृत्यु नहीं। मैंने सुना है एक आदमी ने गोरख से कहा कि मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूं। गोरख ने कहा जाओ और करो, और मैं तुमसे कहता हूं तुम बहुत करके चौंकोगे। उस आदमी ने कहा मतलब? मैं आया था कि आप मुझे समझाएंगे कि मत करो। मैं और साधुओं के पास भी गया, सभी ने समझाया कि भाई ऐसा मत करो, आत्महत्या बड़ा पाप है। गोरख ने कहा पागल हुए, आत्महत्या कोई कर ही नहीं सकता, कोई मर ही नहीं सकता, मरना संभव नहीं है। मैं तुमसे कह देता हूं करो, करके बहुत चौंकोगे, करके पाओगे कि अरे देह तो छूट गई, मैं तो वैसा का वैसा हूं। और अगर असली आत्महत्या मरनी हो तो फिर मेरे पास रुक जाओ, छोटे मोटा खेल करना हो तो तुम्हारी मर्जी, कूद जाओ किसी पहाड़ी से, लगा लो गर्दन में फांसी। असली मरना हो तो रुक जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें वो कला दूंगा जिससे महामृत्यु घटती, फिर दोबारा आना ना हो सकेगा। लेकिन वह महामृत्यु भी सिर्फ हमें महामृत्यु मालूम होती, इसलिए उसको मीठा कह रहे हैं। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मर दीठा, ऐसी मृत्यु तुम्हें सिखाता हूं गोरख कहते, जिस मृत्यु से गुजर के मैं जागा। सोने की मृत्यु हुई मेरी नहीं, अहंकार मरा मैं नहीं, द्वैत मरा मैं नहीं। द्वैत मरा तो अद्वैत का जन्म हुआ, समय मरा तो शाश्वतता मिली। वो जो क्षुद्र सीमित जीवन था टूटा तो बूंद सागर हो गई। हां निश्चित ही जब बूंद सागर में गिरती है तो एक अर्थ में मर जाती, बूंद की तरह मर जाती, और एक अर्थ में पहली बार महाजीवन उपलब्ध होता है, सागर की भांति जीती है। रहीम का वचन है बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज कासों कहें, हेरनहार हैरान, रहीमन अपने आपने। रहीम कहते हैं बिंदु भी सिंधु के समान है, को अचरज कासों कहें, किससे कहें कौन मानेगा। बात इतनी विस्मयकारी है कौन स्वीकार करेगा कि बिंदु और सिंधु के समान है, कि बूंद सागर है, कि अणु में परमात्मा विराजमान है, कि क्षुद्र यहां कुछ भी नहीं है, कि सभी में विराट समाविष्ट है। बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज कासो कहें, ऐसे अचरज की बात है किसी से कहो कोई मानता नहीं। अचरज की बात ऐसी है जब पहली दफा खुद भी जाना था तो मानने का मन न हुआ था। हेरनहार हैरान, जब पहली दफा खुद देखा था तो मैं खुद ही हैरान रह गया था। हेरनहार हैरान, रहीमन अपने आप ने, देखता था खुद को और हैरान होता था, क्योंकि मैंने तो सदा यही जाना था कि क्षुद्र हूं, लेकिन स्वयं का विराट तभी अनुभव में आता है जब क्षुद्र की सीमाएं कोई तोड़ देता है, क्षुद्र का अतिक्रमण करता है जब कोई। अहंकार होकर तुमने कुछ कमाया नहीं, गमाया है। अहंकार निर्मित करके तुमने कुछ पाया नहीं, सब खोया है, बूंद रह गए हो, बड़ी छोटी बूंद रह गए हो। जितने अकड़ते हो उतने छोटे होते जाते हो। अकड़ना और अहंकार को मजबूत करता है। जितने गलोगे उतने बड़े हो जाओगे, जितने पिघलोगे उतने बड़े हो जाओगे। अगर बिल्कुल पिघल जाओ, वाष्पीभूत हो जाओ तो सारा आकाश तुम्हारा है। गिरो सागर में तो तुम सागर हो जाओ, उठो आकाश में वाष्पीभूत होकर तो तुम आकाश हो जाओ। तुम्हारा होना और परमात्मा का होना एक ही है। बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज कासों कहें। लेकिन जब पहली दफे तुम्हें भी अनुभव होगा तुम भी एकदम गूंगे हो जाओगे। गूंगे केरी सरकरा, अनुभव तो होने लगेगा, स्वाद तो आने लगेगा, अमृत तो भीतर झरने लगेगा कंठ में, मगर कहने के लिए शब्द ना मिलेंगे। को अचरज कांसो कहें, कैसे कहें, बात इतने अचरज की है। जिन्होंने हिम्मत करके कहा अहम ब्रह्मास्मि, सोचते हो कोई मानता है? मंसूर ने कहा अनल हक, कि मैं परमात्मा हूं, सूली पे चढ़ा दिया लोगों ने। जीसस को मार डाला, क्योंकि जीसस ने यह कहा कि वह जो आकाश में है मेरा पिता और मैं, हम दोनों एक ही, पिता और बेटा दो नहीं। यहूदी क्षमा ना कर सके। जब भी किसी ने घोषणा की है भगवत्ता की, तभी लोग क्षमा नहीं कर सके। बात ही ऐसी है, को अचरज कासों कहें, किससे कहने जाओ, जिससे कहोगे वही इंकार करने लगेगा। कल गुरुकुल कांगड़ी के भूतपूर्व उपकुलपति सत्यव्रत का आश्रम में आना हुआ। दर्शन उन्हें आश्रम दिखाने ले गई। सत्यव्रत ने उपनिषद पर किताबें लिखी, वेदों के ज्ञाता हैं। इस देश में कुछ थोड़े ही लोग वेद को इतनी गहराई से जानते होंगे जैसा सत्यव्रत जानते हैं। उनके वक्तव्य, उनके विचार मैंने पढ़े, मगर उनका भी प्रश्न दर्शन से यही था कि आप अपने गुरु को भगवान क्यों कहते। उनका भी ऐसे हमारे पंडित में और हमारे अज्ञानी में जरा भी भेद नहीं होता। दर्शन ने ठीक उत्तर दिया उन्हें। दर्शन ने कहा भगवान तो आप भी, मगर आपको इसका स्मरण नहीं। और उन्हें स्मरण आ गया है। मुंहतोड़ जवाब था, दो टूक जवाब था। और पंडित जब कोई इस आश्रम में आया तो ध्यान रखना ऐसा ही ठीक ठीक जवाब देना। उपनिषद पर किताबें लिखी सत्यव्रत ने, जरूर अहम ब्रह्मास्मि शब्द के करीब आए होंगे। ऐसा कौन है जो नहीं आया है? जरूर ये महावाक्य सोचा होगा, विचारा होगा, तत्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तू वही है, और इस पर विवेचन भी किया होगा, इस पर व्याख्यान भी दिए होंगे। लेकिन ये बात ऊपर ऊपर गुजर गई। इससे तो सीधी सादी दर्शन में ज्यादा गहरी उतर गई। ये पांडित ही रहा, थोथा कचरे जैसा, इसका कोई मूल्य नहीं, दो कौड़ी इसका मूल्य नहीं। उपनिषद कहते हैं कि तुम वही हो, और उपनिषद कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, फिर भी तुम पूछे चले जा रहे हो कि क्यों किसी को भगवान कहे। मैं तुमसे पूछता हूं ऐसा कौन है जिसको भगवान न कहे। रामकृष्ण से किसी ने पूछा भगवान कहां है, तो रामकृष्ण का यह मत पूछो, यह पूछो कि कहां नहीं है। नानक को काबा के पुरोहितों ने कहा पैर हटा लो काबा की तरफ से, शर्म नहीं आती साधु होकर पवित्र मंदिर की तरफ पैर किए हो। नारद ने कहा मेरे तुम पैर उस तरफ हटा दो जिस तरफ पवित्र परमात्मा ना हो, मैं क्या करूं, कहां पैर रखूं, किसी तरफ तो पैर रखूंगा लेकिन वह तो सब तरफ मौजूद है, सभी दिशाओं को उसी ने घेरा है। लेकिन मुझे चिंता नहीं होती, नानक ने कहा, क्योंकि वही बाहर है, वही भीतर है, उसका ही पत्थर है, उसके ही पैर है, मैं भी क्या करूं, मैं बीच में कौन हूं। दर्शन ने ठीक कहा कि जाग जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भगवान ही विराजमान है। इससे ही मैं चकित होता हूं कि जिनको हम तथाकथित ज्ञानी कहते हैं और यही ज्ञानी लोगों को चलाते हैं, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, सत्यव्रत, सिद्धांत अलंकार, सिद्धांत के जानने वाले, सिद्धि के बिना कोई सिद्धांत को नहीं जानता, शास्त्र पढ़ के कोई सिद्धांत नहीं जाने जाते, स्वयं में उतर के जाने जाते, बिंदु भी सिंधु समान को अचरज कांसो कहें, हैरन हार हैरान रहीमन अपने आपने। रहीम कहते हैं अपने भीतर देखा तो मैं खुद ही हैरान रह गया हूं, चकित अवाक, खुद ही भरोसा नहीं आ रहा कि मैं और परमात्मा, ये जो उठ रही है वाणी भीतर से, अनलहक का नाद उठ रहा है, ये जो अहम ब्रह्मास्मि की गूंज आ रही, ये जो ओंकार जग रहा है, मुझे ही भरोसा नहीं आता कि मैं रहीम, मैं मेरा जैसा क्षुद्र साधारण आदमी, मैं और भगवान, बिंदु भी सिंधु समान। अब मैं किससे कहूं, खुद ही भरोसा नहीं आता तो किससे कहूं, इसका ही भरोसा दिलाने को यहां मैं तुम्हें बैठा हूं। यह भरोसा आ जाए तो समझना सत्संग हुआ, मेरे पास बैठ बैठ के सिद्धांत अलंकार मत बन जाना, सिद्ध बनो, इससे कम में कुछ भी ना होगा, इससे कम का कोई मूल्य नहीं। मरने की कला सीखो, मरो हे जोगी मरो, बूंद की तरह मरो तो समुद्र की तरह हो जाओ। मृत्यु की कला ही महाजीवन को पाने की कला है। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अकोजर ऐसा, गगन सिसिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। बस्ती न शून्यम, ना तो हम कह सकते हैं परमात्मा है और ना कह सकते हैं नहीं है। सोचना विचारना, परमात्मा नहीं और है दोनों का जोड़ है, इसलिए दोनों के पार है। ना तो आस्तिक जानता है उसे, ना नास्तिक जानता है उसे, न तो आस्तिक धार्मिक है न नास्तिक, स्वभावतः नास्तिक तो धार्मिक है ही नहीं। तुम जिसे आस्तिक कहते हो वह भी धार्मिक नहीं है, तुम्हारे आस्तिक और नास्तिक एक ही सिक्के के दो पहलू। आस्तिक कहता है, नास्तिक कहता है नहीं है, दोनों ने आधा आधा चुना है। परमात्मा है और नहीं है, दोनों साथ साथ एक साथ युगपत, उसके होने का ढंग नहीं होने का ढंग है, उसकी पूर्णता शून्य की पूर्णता है, उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी है। परमात्मा में सारे विरोध, सारे विरोधाभास समाहित होते, और यह सबसे बुनियादी विरोध है या नहीं। अगर कहो है तो आधा ही रह जाएगा, फिर जब चीजें नहीं हो जाती तो कहां जाती। नहीं होकर भी तो कहीं होती होंगी, नहीं होकर भी तो कहीं बनी रहती होंगी। एक वृक्ष है, बड़ा वृक्ष, उस पर एक बीज लगा, वृक्ष मर जाएगा, अब तुम बीज को बो दो फिर वृक्ष हो जाएगा। बीज क्या था? वृक्ष का नहीं होना था, वृक्ष का नहीं रूप था। अगर तुम बीज को तोड़ते और खोजते तो वृक्ष तुम्हें मिलने वाला नहीं था। तुम कितनी ही खोज करो बीज में वृक्ष नहीं मिलेगा, वृक्ष कहां गया? लेकिन किसी न किसी अर्थ में बीज में वृक्ष छिपा है, अब अनुपस्थित होकर छिपा है, तब उपस्थित होकर प्रकट हुआ था, अब अनुपस्थित होकर छिपा है। बीज को फिर बो दो जमीन में, फिर सम्यक सुविधा जुटा दो, फिर वृक्ष हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब वृक्ष होगा तो बीज खो जाएगा, दोनों साथ नहीं होंगे। वृक्ष खोता है बीज हो जाता है, बीज खोता है वृक्ष हो जाता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तुम दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते, या कि देख सकते हो, तुम कोशिश करना। सिक्का तो छोटी सी चीज है, हाथ में रखा जा सकता है, दोनों पहलू पूरे पूरे एक साथ देखने की कोशिश करना, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। जब एक पहलू देखोगे दूसरा नहीं दिखाई पड़ेगा, जब दूसरा देखोगे पहला खो जाएगा। लेकिन पहले के खो जाने से क्या तुम कहोगे कि नहीं है? सृष्टि भी परमात्मा का रूप है, प्रलय भी उसका। एक रूप है अभिव्यक्ति और एक रूप है अनभिव्यक्ति। जब तुम तार छिड़ देते हो वीणा के, संगीत जगता है। अभी अभी कहां था, क्षण भर पहले कहां था? शून्य में था। था तो जरूर, न होता तो पैदा नहीं हो सकता था, छिपा पड़ा था किसी गहन गुफा में। तुमने तार क्या छेड़े, पुकार दे दी। तुमने तार छेड़कर प्रेरणा दे दी। गीत तो सोया पड़ा था, जाग उठा। संगीतज्ञ स्वर पैदा नहीं करता, सिर्फ जगाता है, सोए को जगाता। कौन स्वर पैदा करेगा? स्वर पैदा करने का कोई उपाय नहीं। इस जगत में ना तो कोई चीज बनाई जा सकती है और ना मिटाई जा सकती। अब तो विज्ञान भी इस बात से सहमत है, तुम रेत के एक छोटे से कण को भी मिटा नहीं सकते और ना बना सकते हो। न तो कुछ बनाया जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है। जगत उतना ही है जितना है, लेकिन फिर भी चीजें बनती और मिटती। तो इसका अर्थ हुआ जैसे पर्दे के पीछे चले जाते हैं रामलीला के खेल करने वाले लोग, फिर पर्दे के बाहर आ जाते, पर्दा उठा और पर्दा गिरा। वृक्ष विदा हो गया, पर्दा गिर गया, वृक्ष पर्दे की ओर चला गया, बीज हो गए, पर्दा उठा, बीज फिर वृक्ष हुआ। जब तुम एक व्यक्ति को मरते देखते हो तो तुम क्या देख रहे हो? परमात्मा का नहीं रूप। अभी था, अब नहीं। तो जो था वही नहीं हो जाता है, और जो नहीं है वो फिर है हो जाएगा। आस्तिक भी आधे को चुनता है, नास्तिक भी आधे को चुनता है, दोनों में कुछ फर्क नहीं। तराजू के एक एक पल्ले को चुन लिया है दोनों ने, दोनों ने तराजू तोड़ डाला है। तराजू के दोनों पल्ले चाहिए, तराजू दोनों पल्लों का जोड़ है और जोड़ से कुछ ज्यादा भी। परमात्मा है और नहीं का जोड़ है और दोनों से कुछ ज्यादा भी। आस्तिक भी भयभीत है, नास्तिक भी भयभीत है। तुम आस्तिक और नास्तिक के भय को अगर समझोगे तो तुम्हें एक बड़ी हैरानी की बात पता चलेगी कि दोनों में जरा भी भेद नहीं। दोनों की बुनियादी आधारशिला भय है। आस्तिक भयभीत है कि पता नहीं मरने के बाद क्या हो, पता नहीं जन्म के पहले क्या था, पता नहीं अकेला रह जाऊंगा, पत्नी छूट जाएगी, मित्र छूट जाएंगे, पिता छूट जाएंगे, मां छूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा, सब बसाया था सब छूट जाएगा, अकेला रह जाऊंगा निर्जन की यात्रा पर, कौन मेरा संगी, कौन मेरा साथी? परमात्मा को मान लो, उसका भरोसा साथ देगा, वह तो साथ होगा। आस्तिक भी डर के कारण परमात्मा को मान रहा है। मंदिर मस्जिदों में जो लोग झुके हैं घुटनों के बल और प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं भय से निकल रही, और जब भी प्रार्थना भय से निकलती गंदी हो जाती। तुम्हारी प्रार्थना के कारण मंदिर भी गंदे हो गए, तुम्हारी प्रार्थनाओं की गंदगी के कारण मंदिर भी राजनीति के अड्डे हो गए, वहां भी लड़ाई झगड़ा है, हिंसा वैमनस्य प्रतिस्पर्धा है। मंदिर और मस्जिद सिवाय लड़ाने के और कोई काम करते ही नहीं। आस्तिक भयभीत है, नास्तिक भी मैं कहता हूं भयभीत है तो तुम थोड़ा चौंकोगे, क्योंकि आमतौर से लोग सोचते हैं अगर नास्तिक भयभीत होता तो परमात्मा को मान लेता। लोग कोशिश करके हार चुके हैं, उसे डरा डरा के उसको डरवाते हैं नरक से, वहां के बड़े दृश्य खींचते हैं, बड़े विहंगम दृश्य, बिल्कुल तस्वीर खड़ी कर देते हैं नरक की, आग की लपटें, जलते हुए कड़ाहे, बीभत्स शैतान, सताएंगे बुरी तरह, मारेंगे बुरी तरह, आग में जलाएंगे बुरी तरह, इतना डरवाते हैं फिर भी नास्तिक मानता नहीं ईश्वर को। तो लोग सोचते हैं शायद नास्तिक बहुत निर्भय, बात गलत है। जो मनस की खोज में गहरे जाएंगे वो पाएंगे कि नास्तिक भी ईश्वर को इसलिए इंकार कर रहा है कि वो भयभीत है, उसका इंकार भय से ही निकल रहा है। अगर ईश्वर है तो वो डरता है, तो फिर नरक भी होगा, तो फिर स्वर्ग भी होगा, तो फिर पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। अगर ईश्वर है तो फिर किसी दिन जवाब भी देना होगा। अगर ईश्वर है तो फिर कोई आंख हमें देख रही है, कोई हमें परख रहा है, कहीं हमारे जीवन का लेखा जोखा रखा जा रहा है और हम किसी के सामने उत्तरदायी हैं, और हम ऐसे ही बचना निकलेंगे। अगर ईश्वर है तो फिर हमें अपने को बदलना पड़ेगा, फिर हमें इस ढंग से जीना होगा कि हम उसके सामने सिर उठा के खड़े हो सके। और अगर ईश्वर है तो एक और घबराहट पकड़ती है नास्तिक को, अगर ईश्वर है तो मुझे उसे खोजना भी होगा, जीवन दांव पे लगाना होगा, ये सस्ता सौदा नहीं है। अच्छा यही हो कि ईश्वर ना हो तो छुटकारा हुआ, ईश्वर के साथ ही छुटकारा हो गया, स्वर्ग से भी नरक से भी। ना नरक का डर रहा, ना स्वर्ग खोने का डर रहा, ना ये भय रहा कि जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं ये स्वर्ग चले जाएंगे, है ही नहीं। कौन स्वर्ग गया है, कौन जाएगा, कहां जाएगा, आदमी बचता ही नहीं मरने के बाद, इसलिए कैसा पुण्य कैसा पाप। चार्वाकों ने, जो कि नास्तिक परंपरा के मूल स्रोत हैं, उन्होंने कहा फिक्र मत करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, पियो, अगर ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो पियो, बेफिक्री से पियो, चुकाने की चिंता ही मत करो, कौन लेना कौन देना, मर गए सब पड़ा रह जाएगा, तुम्हारा भी और उसका भी, और पीछे कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई बचता ही नहीं तो भय क्या, फिर पाप करना है पाप करो, बुरा करना है बुरा करो, जैसे जीना हो मौत से जियो, दो दिन की जिंदगी है, ठाट से जियो, फिक्र छोड़ो। दूसरे को चोट भी पहुंचती हो, दूसरे की हिंसा भी होती हो तो चिंता ना लो, कैसी हिंसा कैसी चोट, ये सब पुरोहितों का जाल है तुम्हें डरवाने के लिए। मगर अगर हम चार्वाक चित्त के भीतर भी प्रवेश करें तो वही डर है, वो परमात्मा को इंकार कर रहा है डर के कारण। तुमने ख्याल किया अनेक लोग हैं जो भूत प्रेत को इंकार करते हैं सिर्फ डर के कारण, तुम्हारा उनसे परिचय होगा कि नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, जरा उनके चेहरे पे गौर करो। एक महिला एक बार मेरे घर मेहमान हुई, उसे ईश्वर में भरोसा नहीं, वो कहे ईश्वर है ही नहीं। मैंने कहा छोड़ ईश्वर के, भूत प्रेत को मानती है? उसने कहा बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। मैंने कहा तू ठीक से सोच ले, क्योंकि आज मैं हूं तू है और ये घर है। भगवान का तो मैं नहीं कह सकता कि तुझे प्रत्यक्ष करवा सकता हूं, लेकिन भूत प्रेत का करवा सकता हूं। उसने कहा आप भी कहां की बातें कर रहे हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं। लेकिन मैं देखने लगा वो घबराने लगी, वो इधर उधर देखने लगी, रात गहराने लगी। मैंने कहा फिर ठीक है, मैं तुझे बता देता हूं। उसने कहा मैं मानती नहीं, आप क्या मुझे बताएंगे, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैंने कहा मानने न मानने का सवाल नहीं, ये घर जिस जगह बना है यहां कभी एक धोबी रहता था पहले महायुद्ध के समय, उसकी नई नई शादी हुई, बड़ी प्यारी दुल्हन घर आई और सब तो सुंदर था दुल्हन का, एक ही खराबी थी कि कानी थी, गोरी थी बहुत, सब अंग सुडौल थे, बस एक आंख नहीं थी। उसका चित्र मैंने खींचा। धोबी को युद्ध पर जाना पड़ा, पहले ही महायुद्ध में भर्ती कर लिया गया, चिट्ठियां आती रही, अब आता हूं तब आता हूं, और धोबन प्रतीक्षा करती रही करती रही करती रही, वो कभी आया नहीं, वो मारा गया युद्ध में। धोबन उसकी प्रतीक्षा करते करते मर गई और प्रेत हो गई, और अभी भी इसी मकान में रहती और प्रतीक्षा करती कि शायद धोबी लौट आए। एक ही उसकी आंख है, गोरी चिट्टी औरत है, काले लंबे बाल है, लाल रंग की साड़ी पहनती। वो मुझसे कहा मैं मानती ही नहीं, मगर लेकिन देखने लगा कि वो घबरा के इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा मैं तुझे इसलिए कह रहा हूं कि तू पहली दफा नई इस घर में रुक रही है आज रात। इस घर में जब भी कोई नया आदमी रुकता है तो वो धोबन रात आके उसकी चादर उघाड़ के देखती कि कहीं धोबी लौट तो नहीं आया। उसके चेहरे पर पीलापन आने लगा। उसने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, आप जैसा बुद्धिमान आदमी भूत प्रेत में मानता है। मैंने कहा मानने का सवाल नहीं, लेकिन तुझे चेताना भी जरूरी है, नहीं तो तू डर जाएगी ज्यादा। अब तेरे को मैंने बता दिया, अगर कोई कानी औरत गोरी चिट्टी लाल साड़ी में तेरी चादर हटा दे तो घबराना मत, वो नुकसान किसी का कभी नहीं करती, चादर पटक के पैर फटकते हुए वापस चली जाती। और एक लक्षण और उसका मैं बता दूं, जिनके घर में उन दोनों मेहमान था उनको रात दांत पीसने की आदत है, तो रात में वो कोई 10-5 दफा दांत पीसने लगते। तो मैंने उसका उस औरत की एक आदत और तुझे बता दूं, जब वो आएगी कमरे में तो दांत पीसती हुई आती, स्वभावतः कितनी प्रतीक्षा करे, जमाने बीत गए, उस औरत का प्रेम क्रोध से भरी आती, धोबी धोखा दे गया, अब तक नहीं आया, तो दांत पीसती, तुझे दांत पीसने की आवाज सुनाई पड़ेगी पहले। उसने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं मानती ही नहीं, आप बंद करें ये बातचीत, आप व्यर्थ मुझे डरा रहे हैं। मैंने कहा तू अगर मानती नहीं तो डरने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसी बात चलती रही, रात 12 बज गए, तब मैंने उसको कहा तू जा कमरे में सो जा। वो कमरे में गई, संयोग की बात वो बिस्तर पर लेटी कि उन सज्जन ने दांत पीसे, वो बगल के कमरे में सो रहे थे। मुझे पक्का भरोसा ही था उन पर आश्वासन किया जा सकता, 10 दफे तो वो पीसते ही हैं रात में, कम से कम वो पीसेंगे कभी ना कभी। उसने जाके बिस्तर पर बैठी, प्रकाश बुझाया और उन्होंने दांत पीसे, चीख मार दी उसने। मैं भागा पहुंचा, प्रकाश जलाया, वो तो बेहोश पड़ी और कोने की तरफ मुझे बता रही, वो खड़ी। उसको मैंने लाख समझाया कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, उसने कहा मैं मान ही नहीं सकती, होते कैसे नहीं, वो सामने खड़ी। और जो आपने कहा था, एक आंख गोरा चिट्टा रूप, काले बाल, लाल साड़ी और दांत पीस रही। रात भर परेशान होना पड़ा मुझे, क्योंकि वो न सोए न सोने दे, वो कहे मैं सो ही नहीं सकती, अब मैं सोऊंगी वो फिर आएगी और आप कहते हैं चादर उठाएगी, इतने पास आ जाएगी। मैं उसको कहूं कि कोई भूत प्रीत होते हैं सब कल्पना, में तो कहानी कह रहा था तेरे से, तुझे सिर्फ उसको तो रात बुखार आ गया, रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा। और जिनके घर में मेहमान था वो कहने लगी कि आप भी फिजूल के उपद्रव खड़े कर ले। वो महिला दूसरे दिन सुबह चली गई, फिर कभी नहीं आई। उसको मैंने कई दफा खबर भिजवाई कि भाई कभी तो आओ, उस घर में पैर नहीं रख सकती हूं। मैं उसको समझाऊं कहीं भूत प्रेत होते हैं, वो कहे आप छोड़ो ये बात, किसको समझा रहे, मुझे खुद ही अनुभव हो गया। ख्याल करना, अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम जिस चीज से डरते हो उसको इंकार करते हो। इंकार इसलिए करते हो ताकि तुम्हें यह भी याद न रहे कि मैं डरता हूं, है ही नहीं तो डरना क्या है। आस्तिक और नास्तिक में जरा भी भेद नहीं है। एक विधायक रूप से भयभीत है, एक नकारात्मक रूप से भयभीत है, बस ऋण और धन का फर्क है, मगर भय दोनों का है। नास्तिक डर के कारण कह रहा है ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर मानना तो फिर उसके पीछे और बहुत कुछ मानना पड़ता है जो उसे कपाता है। आस्तिक कह रहा है ईश्वर है, विधायक रूप से भयभीत है, वो कह रहा है ईश्वर है, अगर मैं उसको न मानूं, उसकी स्तुति ना करूं, प्रार्थना पूजा ना करूं, उसको मनाऊं ना, तो सताया जाऊंगा। धार्मिक व्यक्ति कहता है ईश्वर के दोनों रूप है। ईश्वर आस्तिक और नास्तिक दोनों की धारणाओं विश्वासों के पार है। बस्ती न शून्यम, न तो वह है ऐसा कह सकते, न कह सकते कि नहीं है। शून्यम न बस्ती, न कह सकते कि शून्य है, न कह सकते कि पूर्ण है। अगम अगोचर, ऐसा ऐसा अगम्य है, हमारा कोई शब्द उसको माप नहीं सकता। हमारे शब्द छोटी छोटी चाय की चम्मचों जैसे, वह सागर जैसा, इन चाय की चम्मचों में सागर को नहीं भरा जा सकता और न सागर को नापा जा सकता है। हमारे सब माप बड़े छोटे, हमारे हाथ बड़े छोटे, हमारी सामर्थ्य बड़ी छोटी, उसका विस्तार अनंत है, वह असीम है, अगम अगोचर ऐसा। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही, जे जानती ते कहत नहीं, कहत ते जानती नाही। रहीमन बात अगम्य की, वह इतना अगम्य है। अगम्य शब्द का अर्थ समझना, अगम्य का अर्थ होता है जिसकी हम थाय ना पा सके, अथाह है। लाख करें उपाय और थाय ना पा सके, क्योंकि उसकी थाय है ही नहीं, और जो उसकी थाय लेने गए हैं वो धीरे धीरे उसी में लीन हो गए। कहते हैं दो नमक के पुतले एक बार सागर की थाय लेने गए थे, छलांग लगा दी सागर में, भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मेला भरा था सागर के तट पर, सारे लोग आ गए थे। फिर दिनों तक प्रतीक्षा होती रही, फिर मेला धीरे धीरे उजड़ भी गया, वो नमक के पुतले न लौटे सो न लौटे। नमक के पुतलों को थाय भी ना मिली और खुद भी मिट गए। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई। गए थे खोजने, खो गए। नमक के पुतले सागर की खोज में जाएंगे, कब तक बचेंगे, गल गए होंगे। सागर के ही हिस्से थे, इसलिए नमक के पुतले का ख्याल है। हम भी नमक के पुतले हैं, वह सागर, उसे खोजने जाएंगे, खो जाएंगे। अगम्य का अर्थ होता है सिर्फ अज्ञात नहीं, क्योंकि अज्ञात वह है जो कभी ज्ञात हो जाएगा। आज जो ज्ञात हो गया है कभी अज्ञात था। चांद पर आदमी नहीं चला था, अब आदमी चल लिया। अभी तक चांद अज्ञात था, अब ज्ञात हो गया। हमें अणु का रहस्य पता नहीं था, अब पता हो गया। परमात्मा अज्ञात नहीं है, यही धर्म और विज्ञान का भेद है। धर्म कहता है जगत में तीन तरह की बातें, ज्ञात जो जान लिया गया, अज्ञात जो जान लिया जाएगा, और अज्ञेय जो न जाना गया है और न जाना जाएगा। विज्ञान कहता है जगत में सिर्फ दो ही चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। हिंदुस्तानी